एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि सच पूछिए तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, फ्रांसीसी क्रांति।
हाँ बिल्कुल।
और इस जटिल सफर को समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं जाने माने इतिहासकार विलियम डॉयल के काम का,
और खासकर उनके जो स्रोत हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी और अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर आधारित। डॉयल का नजरिया मुझे लगता है काफी संतुलित है, सबूतों पर टिका हुआ।
और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है समझना? मतलब इस पुरानी क्रांति से आज हम क्या सीख सकते हैं?
बहुत कुछ। ये हमें दिखाता है कि कैसे जो व्यवस्थाएं बहुत मजबूत दिखती हैं वो भी अंदर से खोखली हो सकती हैं, कैसे ढह सकती हैं, और कैसे अच्छे इरादों से शुरू हुई चीजें भी बिल्कुल अलग दिशा पकड़ लेती हैं।
हाँ, और जो हमारे आज के आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता, उनकी जड़ें भी तो इसी उथल पुथल में हैं, है ना? डॉयल शायद हमें लीक से हटकर सोचने में मदद करते हैं।
बिल्कुल। तो पहले जान लें कि ये विलियम डॉयल हैं कौन। वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, ब्रिटिश एकेडमी के फेलो भी हैं। 18वीं सदी के फ्रांस और फ्रांसीसी क्रांति पर उन्हें दुनिया के बड़े विशेषज्ञों में गिना जाता है।
और उनकी ये जो विशेषज्ञता है ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, मतलब फील्ड वर्क भी है।
हाँ हाँ बिल्कुल, दशकों का रिसर्च है। फ्रांस के आर्काइव्स में उन्होंने काफी काम किया है। उन्हें इतिहास के संशोधनवादी यानी रिविजनिस्ट स्कूल का माना जाता है।
अच्छा, ये संशोधनवादी क्या है? मतलब पहले क्या सोच थी जिसे ये संशोधित कर रहे हैं?
अच्छा सवाल है। पहले खासकर जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनका जोर इस बात पर था कि ये क्रांति मूलतः एक क्लास स्ट्रगल थी, मतलब उभरते हुए पूंजीपति वर्ग और पुराने सामंती कुलीन वर्ग के बीच की लड़ाई।
हाँ, ये तो हमने भी पढ़ा है।
पर डॉयल और दूसरे संशोधनवादी कहते हैं कि ये इतना सीधा नहीं था। वो किसी एक कारण के बजाय कई सारे मिले जुले फैक्टर्स देखते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और वो विचारधारा से ज्यादा सबूतों को, एविडेंस को तरजीह देते हैं।
तो मतलब वो क्रांति को न अच्छा कहते हैं न बुरा, बस जैसा था वैसा समझने की कोशिश करते हैं उसकी जटिलताओं के साथ।
एकदम सही। उपलब्धियां भी देखते हैं और जो भयानक विफलताएं थीं उनको भी। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द ऑक्सफर्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो इस विषय पर एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मानी जाती है और उनकी लिखने की स्टाइल भी ऐसी है कि मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं।
तो फिर डॉयल की किताबों का उनके काम का निचोड़ क्या है, मुख्य तर्क क्या है?
देखिए, डॉयल का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि फ्रांसीसी क्रांति कोई प्री प्लान्ड घटना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने बैठकर पूरी योजना बनाई हो। नहीं, ये सिर्फ जैसा हमने कहा पूंजीपतियों की सामंतों पर जीत थी।
तो फिर क्या थी?
वो इसे एंसियन रिजीम यानी क्रांति से पहले की जो पुरानी फ्रांसीसी व्यवस्था थी उसके एक तरह से अंदरूनी तौर पर चरमराकर ढह जाने से पैदा हुई घटना मानते हैं। काफी हद तक अराजक, अप्रत्याशित, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
यानी जड़ें बाहर नहीं सिस्टम के अंदर ही थीं।
बिल्कुल। डॉयल दो मुख्य चीजों पर जोर देते हैं। एक तो राजशाही का भयंकर वित्तीय संकट। सरकार लगभग दिवालिया हो चुकी थी, खासकर अमेरिकी क्रांति में पैसा लगाने के बाद।
हाँ, वो तो महंगा सौदा था।
और दूसरा उसका राजनीतिक पक्षाघात, मतलब सरकार फैसले नहीं ले पा रही थी या ले भी रही थी तो लागू नहीं कर पा रही थी। इस सबसे एक पावर वैक्यूम, एक शक्ति शून्य पैदा हो गया जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भरे कैसे।
और आपने पहले कहा था कि डॉयल मानते हैं कि क्रांति के परिणाम उसके कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वो जादूगर के चेले वाली बात क्या थी?
हाँ, वो एक दिलचस्प उपमा है। डॉयल का कहना है कि क्रांतिकारी एक तरह से उन जादूगर के चेलों की तरह थे जिन्होंने अनजाने में कुछ ऐसी शक्तियों को जगा दिया, जैसे लोकप्रिय संप्रभुता यानी जनता का शासन, राष्ट्रवाद का उफान और एक तरह का वैचारिक जुनून जिन पर बाद में उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहा।
अच्छा, तो मतलब चीजों के हाथ से निकल गई।
हाँ, काफी हद तक। नतीजा क्या हुआ? पुरानी दुनिया जिसमें राजा, कुलीन वर्ग, चर्च का बोलबाला था वो तो खत्म हो गई और एक नई दुनिया का जन्म हुआ, स्वतंत्रता, समानता के नारों के साथ। लेकिन ये जन्म बहुत हिंसक था। इसमें आतंक था, युद्ध था और आखिर में नेपोलियन की तानाशाही भी थी। डॉयल हमें यही दिखाते हैं कि इतिहास सीधा सीधा नहीं चलता, उसमें बहुत सारे मोड़, दुर्घटनाएं और जरूरतें शामिल होती हैं।
चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्रांति के अलग अलग फेज देखते हैं डॉयल के नजरिए से। शुरुआत करते हैं पुरानी व्यवस्था के संकट 1789 से पहले से। डॉयल बताते हैं कि 1780 के दशक का फ्रांस बाहर से देखने में तो शायद यूरोप का सबसे ताकतवर देश था, पर अंदर से खोखला हो रहा था।
हाँ, और खासकर वो कर्ज का बोझ।
हाँ।
अमेरिकी क्रांति में मदद करने का नतीजा बहुत भारी पड़ा। सरकार पर कर्ज असहनीय हो गया था।
और इस संकट को हल करने की कोशिशें भी हुई है ना, तुर्गो, नेकर, कैलोन जैसे मंत्री आए।
हाँ, कोशिशें तो हुई पर वो कामयाब नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो विशेषाधिकार वाले वर्ग थे, कुलीन वर्ग, चर्च, वो टैक्स देने को तैयार नहीं थे, अपनी छूट छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसमें पार्लियामेंट्स का रोल बहुत बड़ा था।
ये पार्लियामेंट्स क्या थे? संसद जैसे?
नहीं, ये आज की संसद जैसी विधायिका नहीं थी, ये असल में ऊंची अदालतें थीं जिनके पास कुछ राजनीतिक ताकतें भी थीं, और इन्होंने टैक्स सुधारों को लागू होने से रोक दिया। डॉयल का निचोड़ यही है कि सिस्टम अंदर से सड़ रहा था।
और समाज, हम अक्सर सुनते हैं कि तीन वर्ग थे।
वो भी एक सरलीकरण है। समाज बहुत ज्यादा जटिल था, हर वर्ग के अंदर भी बहुत अंतर थे, और नए आर्थिक बदलावों से नए तरह के तनाव पैदा हो रहे थे।
और फिर ज्ञानोदय के विचार भी थे, रूसो, वोल्टेयर।
हाँ, उनके विचारों ने लोगों को सवाल पूछने की, आलोचना करने की भाषा जरूर दी, प्राकृतिक अधिकार, जनता का शासन। लेकिन डॉयल ये भी साफ करते हैं कि ज्यादातर दार्शनिक खुद क्रांति नहीं चाहते थे, वो सुधार चाहते थे।
तो इस पूरे माहौल में राजा लुई 16वें क्या कर रहे थे?
वो बेचारे थोड़े, क्या कहते हैं, अनिर्णायक किस्म के थे। संकट को संभालने में वो नाकाम रहे, और आखिर में जब उन्होंने 1614 के बाद पहली बार एस्टेट्स जनरल, एक पुरानी तरह की संसद बुलाने का फैसला किया, तो एक वित्तीय संकट पूरी तरह से राजनीतिक संकट बन गया।
और यहीं से क्रांति की असल शुरुआत 1789 से 1797 होती है, एस्टेट्स जनरल का जुटना।
हाँ, यहीं से चीजें बहुत तेजी से बदली। तीसरे एस्टेट यानी आम लोगों के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, फिर वो मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ हुई।
ये तो बहुत बड़ा कदम था, मतलब राजा की सत्ता को सीधी चुनौती।
हाँ, डॉयल इसे पहला निर्णायक क्रांतिकारी कदम मानते हैं। इसने कहा कि संप्रभुता राजा में नहीं, राष्ट्र में है। फिर 14 जुलाई को बैस्टील का पतन हुआ। ये किला शाही दमन का प्रतीक था,
और इसके गिरने से लोगों को लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं।
बिल्कुल, जनता की ताकत सामने आई। गाँव में भी किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। डॉयल का विश्लेषण ये दिखाता है कि जनता ने अक्सर घटनाओं को नेताओं की सोच से भी आगे धकेल दिया।
और फिर नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त को वो सारे पुराने विशेषाधिकार खत्म कर दिए, और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा भी जारी की।
हाँ, ये उस वक्त क्रांति के उदारवादी चरण का शिखर था। बहुत अहम घोषणाएं थी ये। लेकिन डॉयल एक चीज को क्रांति की घातक भूल मानते हैं।
अच्छा, वो क्या थी?
वो था 1790 का पादरियों का नागरिक संविधान, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। इसने चर्च को राज्य के कंट्रोल में लाने की कोशिश की और पादरियों से वफादारी की शपथ मंगवाई।
इससे क्या हुआ?
इससे फ्रांसीसी समाज, खासकर कैथोलिक जनता, बुरी तरह बट गई। बहुत से लोग क्रांति के खिलाफ हो गए। इसका एक भयानक नतीजा हमें बाद में देखने को मिला। वोंदे जैसे इलाकों में बड़े और खूनी गृह युद्ध हुए।
और राजा लुई 16वें, वो इन सब बदलावों से खुश तो नहीं होंगे?
बिल्कुल नहीं, वो मन से कभी तैयार नहीं हुए। और जून 1791 में जब उन्होंने देश छोड़कर भागने की कोशिश की और वॉरन में पकड़े गए।
हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी।
उससे लोगों का उन पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म हो गया। अब ये साफ हो गया कि संवैधानिक राजतंत्र शायद चल नहीं पाएगा।
इसके बाद तो माहौल और बिगड़ा होगा। फिर आता है उग्रवाद, गणतंत्र और आतंक का दौर, 1792 से 1794। क्रांति इतनी हिंसक क्यों हो गई? डॉयल क्या कहते हैं?
डॉयल के हिसाब से इस उग्रता का सबसे बड़ा कारण था युद्ध। अप्रैल 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
युद्ध क्यों छेड़ा?
उम्मीद थी कि इससे शायद देश एकजुट हो जाएगा, राजा की स्थिति भी मजबूत होगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। युद्ध ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया, शक और डर फैला दिया,
और इसी माहौल में राजशाही खत्म हुई।
हाँ, अगस्त 1792 में हमला हुआ शाही महल पर, राजशाही खत्म कर दी गई, फ्रांस गणतंत्र बना, और फिर जनवरी 1793 में लुई 16वें को फांसी दे दी गई।
और फिर शुरू हुआ वो कुख्यात आतंक का दौर, रेन ऑफ टेरर। इसके बारे में डॉयल का क्या विश्लेषण है? क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं जैसे रोबेस्पियर का पागलपन था?
डॉयल इसे थोड़ा और जटिल नजरिए से देखते हैं। वो इसे सिर्फ खून खराबात या किसी एक विचारधारा का नतीजा नहीं मानते।
तो फिर क्या मानते हैं?
वो इसे एक ऐसी सरकार की नीति मानते हैं जो युद्ध लड़ रही थी, जिसके अस्तित्व पर खतरा था, बाहर से दुश्मन हमला कर रहे थे, अंदर देश में विद्रोह हो रहे थे। तो सार्वजनिक सुरक्षा समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसके रोबेस्पियर एक प्रमुख सदस्य थे, उसने विरोध को कुचलने और देश को एकजुट रखने के लिए ये क्रूर नीतियां अपनाई।
मतलब हालात की मजबूरी थी।
हाँ, एक तरह से हताशा में उठाए गए कदम थे। इसके लिए क्रांतिकारी न्यायाधिकरण बने, हजारों लोगों को शक के आधार पर या क्रांति के दुश्मन मानकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डॉयल इसे सही नहीं ठहराते, बिल्कुल नहीं, पर वो इसे उस वक्त के भयानक संकट के संदर्भ में रखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये आतंक का दौर हमेशा तो नहीं चला। थर्मिडोर और डायरेक्टरी 1794-1799 में क्या हुआ? आतंक खत्म कैसे हुआ?
जुलाई 1794 में, जिसे थर्मिडोर कहा गया, रोबेस्पियर और उसके साथियों को ही उखाड़ फेंका गया और मार दिया गया। इसके कई कारण थे। युद्ध में फ्रांस की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी, तो आतंक की जरूरत कम महसूस होने लगी। लोग आतंक से थक भी चुके थे और खुद क्रांतिकारियों में भी फूट पड़ गई थी।
तो उसके बाद क्या हुआ? शांति आ गई?
नहीं, शांति तो नहीं आई। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का दौर शुरू हुआ, जिसमें राजनीति थोड़ी दाई और झुकी, थोड़ी नरम हुई। फिर 1795 में डायरेक्टरी नाम की एक नई सरकार बनी, जिसमें 5 डायरेक्टर थे, पर यह सरकार बहुत कमजोर और भ्रष्ट साबित हुई
और ये लगातार मुश्किलों में घिरी रही।
हाँ, इसे दोनों तरफ से खतरा था, राजशाही वापस लाने वालों से भी और बचे खुचे जैकोबिन कट्टरपंथियों से भी। और अपनी सत्ता बचाने के लिए यह सरकार सेना पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई,
और यहीं पर नेपोलियन का रास्ता साफ होता है।
वो लोकप्रिय जनरल बन चुका था। 1799 में उसने एक तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। डॉयल उसे क्रांति का अंत करने वाला नहीं मानते, बल्कि एक तरह से उसका वारिस या समेकक मानते हैं।
वारिस कैसे?
ऐसे कि उसने क्रांति के कुछ सामाजिक बदलावों को पक्का किया, जैसे कानून के सामने सबकी बराबरी, योग्यता के आधार पर तरक्की, इन्हें उसने अपने नेपोलियोनिक कोड में जगह दी। लेकिन उसने राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म कर दी। एक तरह से उसने क्रांति को स्थिर कर दिया, पर उसकी कीमत आजादी थी।
तो इस पूरी कहानी से, इस विश्लेषण से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं? पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि कारण बहुत सारे थे और बहुत कुछ अचानक हुआ। कोई सीधी सरल कहानी नहीं है ये, चुका था।
गलत अनुमान, दुर्घटनाएं, इन सब का भी रोल था। ये आज भी हमें याद दिलाता है कि बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर कई परतें होती हैं।
जैसे अपने यहाँ भी कभी कभी लगता है ना कि कोई छोटी सी बात अचानक इतनी बड़ी कैसे बन गई, शायद उसके पीछे भी कई सालों से पनप रहे कारण होते हैं।
हो सकता है, बिल्कुल। दूसरा विषय जो डॉयल उठाते हैं वो है आदर्शों और हकीकत के बीच का फासला।
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये नाने तो बहुत अच्छे थे।
हाँ, पर उन्हें लागू करना, खासकर जब देश युद्ध लड़ रहा हो, अंदरूनी दुश्मन हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आदर्श अक्सर जमीनी सच्चाइयों से टकराते हैं। ये शायद हर बड़े बदलाव की कहानी है।
हाँ, ये तो आज भी हम देखते हैं कि अच्छी नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना बिल्कुल दूसरी।
तीसरा, युद्ध ने कैसे क्रांति की दिशा बदल दी। बाहरी हमले ने अंदरूनी राजनीति को और ज्यादा कट्टर और ज्यादा हिंसक बना दिया। आतंक का दौर शायद बिना युद्ध के ना आता।
ये भी एक पैटर्न है जो इतिहास में बार बार दिखता है ना?
हाँ, युद्ध अक्सर चरमपंथ को हवा देता है। और चौथा, शायद सबसे जरूरी विषय है, क्रांति की विरोधाभासी विरासत।
विरोधाभासी कैसे, जरा समझाइए।
ऐसे कि इसी क्रांति ने हमें आधुनिक लोकतंत्र के बीज दिए, जनता की संप्रभुता का विचार, नागरिक अधिकारों की बात। लेकिन इसी क्रांति ने हमें आधुनिक तानाशाही के तरीके भी सिखाए। एक बहुत शक्तिशाली सेंट्रलाइज्ड राज्य, विचारधारा के नाम पर जनता को गोलबंद करना, राज्य का डर और आतंक का इस्तेमाल।
अच्छा, यानी लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के तत्व यहीं से निकले।
हाँ, डॉयल यही कहते हैं, ये दोनों चीजें, आजादी की चाह भी और कंट्रोल की जरूरत भी, फ्रांसीसी क्रांति की देन है और ये तनाव आज भी दुनिया में मौजूद है।
डॉयल की कुछ बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे उनका ये कहना कि क्रांति क्रांतिकारियों ने नहीं बनाई, पुरानी व्यवस्था के पतन ने उन्हें बनाया। ये कितना सही लगता है, नेता अक्सर हालात से पैदा होते हैं।
बिल्कुल, और चर्च वाले मामले पे उनकी वो बात, कैथोलिक चर्च को राज्य के अधीन करने का निर्णय क्रांति की सबसे विनाशकारी भूल थी। यह हमें सिखाता है कि धर्म जैसे संवेदनशील मामलों में राज्य का दखल कितना खतरनाक हो सकता है, समाज को कैसे तोड़ सकता है।
हाँ, ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है, और आतंक के दौर पर उनका नजरिया भी मुझे महत्वपूर्ण लगा। आतंक केवल खूनी विचारधारा का उत्पाद नहीं था, बल्कि युद्ध में घिरी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही सरकार की हताश नीति थी। ये हमें चीजों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखने से रोकता है।
हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट को समझने पर जोर देता है, और आखिर में वो विरोधाभास वाली बात, क्रांति की सच्ची विरासत उसका गहरा विरोधाभास है। इसने दुनिया को उदार लोकतंत्र और आधुनिक तानाशाही दोनों के खाके दिए हैं। ये बताता है कि इतिहास से हमें आसान जवाब नहीं मिलते, बल्कि जटिल सवाल मिलते हैं।
तो इस सबका आज की दुनिया में, वास्तविक जीवन में क्या महत्व है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो शायद यही कि राजनीतिक बदलाव कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं और उनमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।
हाँ, और लीडरशिप का महत्व, लुई सोल्वे का अनिर्णय, रोबेस्पियर की कट्टरता, नेपोलियन का यथार्थवाद, ये सब सबक हैं आज के नेताओं के लिए भी कि कैसे अलग अलग दबावों के बीच संतुलन साधना है, कैसे स्थिरता बनाए रखनी है।
और ये भी कि किसी भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसकी अंदरूनी कमजोरियों को, लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे फ्रांस में टैक्स का अन्याय,
कायतें अनसुनी करना महंगा पड़ सकता है,
और अनपेक्षित परिणाम वाली बात भी, आप करते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है।
हाँ, जैसे युद्ध शुरू करने का फैसला, उसका असर इतना बड़ा और विनाशकारी होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। ये हमें बताता है कि बड़े फैसलों के दूरगामी परिणाम सोचकर ही कदम उठाना चाहिए, और ये भी कि मुश्किल वक्त में लोग अक्सर आज़ादी से ज्यादा शायद स्थिरता और व्यवस्था को चुन लेते हैं, जैसा नेपोलियन के समय हुआ।
ये भी सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा से अंतिम विचार क्या लेकर जा रहे हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे इतिहास की अप्रत्याशिता है। चीजें कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और वो जादूगर के चेले वाली बात कि कैसे अच्छे इरादे भी हाथ से निकल सकते हैं।
और मेरे लिए शायद वो विरोधाभासी विरासत वाली बात सबसे अहम है। ये सोचना कि एक ही घटना ने हमें आज़ादी के सबसे ऊंचे आदर्श भी दिए और दमन के सबसे बुरे तरीके भी, ये बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं है, और आज की दुनिया को समझने के लिए फ्रांसीसी क्रांति को समझना शायद बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प है कि इतिहास की ये पैटर्न, संकट, सुधार की जरूरत, कट्टरता का खतरा, स्थिरता की तलाश, आज हमारी दुनिया में कहां कहां और कैसे कैसे नजर आते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।